नमस्कार श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पुराने नियम में से यिर्मयाह नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से यिर्मयाह नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम यिर्मयाह की पुस्तक से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जब हम आपके वचन को सुने तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन में बोलने और बातचीत करने पाए, उनके जीवन में शांति और आनंद देने पाए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, बीमार अवस्था में हैं। पिताजी, आप उनकी भी सुधि लें, उनकी भी सहायता करें, आज के वचन पर अपनी आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम देख रहे थे कि राजा योशियाह परमेश्वर का भय मानता था, परंतु प्रजा परमेश्वर से दूर थी। इसी समय परमेश्वर ने यिर्मयाह को उसका संदेश सुनाने के लिए बुलाया। यिर्मयाह एक भविष्यद्वक्ता था। राजा योशियाह ने सब मूर्तें तुड़वा दी थी और मंदिर का भी पुनरुद्वार करवाया। परिणाम स्वरूप उन्हें वहां मूसा की व्यवस्था मिली और प्रजा ने मंदिर में आराधनाएं आरंभ कर दी, परंतु उन्होंने न तो अपना आचरण बदला था और न ही मूर्ति पूजा करना बंद किया। इसी बीच परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि वह मंदिर के फाटक में खड़ा होकर परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचाए कि यदि वे अपना चाल चलन सुधार लेंगे तो परमेश्वर उन्हें देश में रहने देगा, अन्यथा मंदिर की अनिवार्यताएं पूरी करने मात्र से उन पर आने वाला परमेश्वर का दंड रुकेगा नहीं। परमेश्वर उन्हें स्पष्ट बताता है। आइए हम पढ़ें यिर्मयाह की पुस्तक 9 अध्याय उसके 23 और 24 पद में। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। धर्मशास्त्र के ये दो पद अत्यधिक अर्थपूर्ण एवं अद्भुत पद हैं। ये पद अपने आप में परिपूर्ण हैं और प्रायः संदर्भित भी किए जाते हैं, परंतु हमें स्मरण रखना है कि ये पद उनसे कहे गए थे जिन्होंने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना था। जी हाँ, हम किस बात को अपनी महिमा समझते हैं? निसंदेह हम मानवीय बुद्धि, धन संपत्ति और पद प्रतिष्ठा को अपनी महिमा मानते हैं। हमें यह समझ लेना है कि हमारी शक्ति बुद्धि में नहीं, शेयर बाजार में नहीं, अर्थव्यवस्था में नहीं है। हमारी शक्ति राजनेताओं की चतुराई में भी नहीं है। हमारी शक्ति परमाणु हथियारों में नहीं है। हमारी शक्ति आत्मिक मान्यताओं में, नैतिक मान्यताओं में, हमारे सद्गुणों में और जीवन के उद्देश्यों में निहित है। आज हमारे स्कूलों और कॉलेजों में इनका ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता है। हमने एक ऐसी पीढ़ी उत्पन्न की है जो अशिष्ट है, जिसमें नैतिक उद्देश्यों का बोध नहीं है। सच तो यह है कि हमने यिर्मयाह के वचन के अनुसार अंधेरे पर्वत पर अपना मार्ग खो दिया है। हम फिसल कर नीचे आ रहे हैं, अर्थात पर्वत से नीचे गिर रहे हैं। हमारा नैतिक जीवन का पतन होता जा रहा है। मैं जानता हूं कि ऐसी बातें मुझे जनमान्य नहीं बनाएंगी। मैं मित्र नहीं बना रहा हूं और ना मनुष्य को प्रभावित कर रहा हूं। यिर्मयाह ने भी ऐसा नहीं किया था। मैं तो यिर्मयाह के साथ ही खड़ा रहूंगा, क्योंकि मुझे आशा है कि जागृति अवश्य आएगी। वचन में लिखा है कि जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। मेरे मित्रों, ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो ईश्वर रहित दर्शन शास्त्र से अधिक कुछ जानते हैं। हमें ऐसे मनुष्यों की आवश्यकता है जो परमेश्वर को जानते हैं, उसके वचन को जानते हैं और उसका पालन करते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम परमेश्वर की ओर फिरें। हमें दिखावा, आधुनिकता और भ्रम से बचना है कि हम अति बुद्धिमान हैं। हम अपनी उपलब्धियों की गर्व से चर्चा करते हैं, जबकि आवश्यकता तो यह है कि हम परमेश्वर को महिमान्वित करने वाला चाल चलन रखें, ताकि लोग हमारे जीवन को देखकर कहें कि हम आपके बेटे और बेटियां हैं, अर्थात हम परमेश्वर के लोग हैं। मेरे प्रियो, यहां पर अध्याय 9 समाप्त होता है। हम आगे बढ़ेंगे और अध्याय 10 में देखेंगे कि मंदिर के फाटक पर यिर्मयाह का संदेश समाप्त होता है, और अध्याय 10 से 12 में व्यवस्था की पुस्तक मिल जाने के बाद के सुधार और जागृति का उल्लेख है। व्यवस्था की पुस्तक का प्रभाव राजा योशियाह पर गंभीरता से पड़ा। उसे बोध हुआ कि उसकी प्रजा परमेश्वर की इच्छा से कितनी दूर है। उस पर व्यवस्था की पुस्तक के पढ़ने का प्रभाव पड़ा और उसका जीवन बदल गया। उसने अपने लोगों को परमेश्वर के साथ वाचा बांधने के लिए प्रेरित किया कि वे सदा उसकी सेवा करेंगे। आइए देखेंगे कि मूर्ति पूजा की मूर्खता जो उन्होंने की। इस अध्याय में हम देखेंगे कि उन्होंने परमेश्वर को विकल्प बना लिए थे। मनुष्यों के पास सदा ही परमेश्वर का विकल्प रहा है। ऐसा भी होता है कि मनुष्य स्वयं ही अपना परमेश्वर बन जाता है। ऐसे अनेक जन हैं जो अपने स्वयं की पूजा करते हैं। कुछ लोग धन की पूजा करते हैं और कुछ लोग धनवान बनने के लिए अपना विवेक बेच देते हैं। कुछ लोग यश के लिए पूजा करते हैं और लक्ष्य प्राप्ति के लिए भी कुछ ऐसा ही करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर के विकल्प हैं जिनके बारे में यिर्मयाह चर्चा करता है। यिर्मयाह की पुस्तक 10 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, हे इसराइल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, न उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं। मनुष्य आज भी वही कर रहा है जो यर्मिया के युग में किया जा रहा था। वे राशिफल द्वारा चलते थे, वे अपनी जन्म कुंडली जानना चाहते थे। आज समाचार चैनल इस अनर्थ को बढ़ावा दे रही है। लोग अपने जीवन को जानना चाहते हैं। परमेश्वर चेतावनी देता है कि अन्य जातियों के मार्गों पर न चलें। मेरे मित्रों, आज नक्षत्रों का ज्ञान प्राचीन अन्य जाति संसार की ही देन है। यर्मिया की पुस्तक 10 अध्याय उसके 3 और 4 पद में लिखा है, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी हैं, मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काट है, जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया है। लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिल डुल ना सके। कुछ लोग तो यर्मिया द्वारा मूर्ति पूजा के खंडन को क्रिसमस ट्री से भी जोड़ देते हैं। यह तो एक कल्पना और मूर्खता की बात है। उसके युग में क्रिसमस ट्री नहीं था, वह एक मूर्ति पूजा की बात कर रहा था। क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी हैं, वह मूर्ति पूजा का उपहासपूर्ण खंडन करता है। वह कहता है कि वे जंगल से लकड़ी काटकर लाते हैं और एक मूरत बनाकर उसे सोने चांदी से सजाकर कील से ठोंक देते हैं, वही उनका ईश्वर बन जाता है। यह ऐसा है जैसा विजुखा की पूजा करना। मेरे प्रियो, यदि आप क्रिसमस ट्री को श्रद्धा अर्पित करते हैं तो यर्मिया की चेतावनी आपके लिए भी है। परंतु मैं बड़े दिन के समय स्वयं की पूजा का संकट अधिक देखता हूं। अपने ही लिए बड़ा दिन मनाना, सामान खरीदना आदि बातें आती हैं। आगे हम पढ़ेंगे यर्मिया की पुस्तक 10 अध्याय उसके 6 पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। परमेश्वर की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। जीवित एवं सच्चे परमेश्वर से फिरकर वस्तुओं की पूजा करना और राशि फल में विश्वास करना कैसी मूर्खता की बात है। यर्मिया की पुस्तक 10 अध्याय के 11 पद में लिखा है, तुम उनसे यह कहना, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि अन्य जातियों के देवताओं ने जगत की सृष्टि नहीं की है। जगत का सृजनहार हमारा जीवित परमेश्वर है। तब हम आगे पढ़ते हैं कि यर्मिया 10 अध्याय उसके 12 पद में कहता है, उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ से बनाया, उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। आकाश में सितारे अपने अपने स्थान पर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें वहां रखा है। उसने अपनी इच्छा के अनुसार ही सितारों को आकाश में स्थिर किया है। उसने आपकी और मेरी राय जानना नहीं चाही कि सितारों की व्यवस्था कैसे की जाए। यह संपूर्ण ब्रह्मांड उसका ही है और वह हमारी आराधना के योग्य है। हम प्राचीन युग के लोगों पर हंसते हैं कि वे लकड़ी तराश कर मूर्ति बनाते थे। हम अपने आप को सभ्य और शिक्षित कहते हैं, परंतु हम भी तो हजारों रुपए खर्च करके कुंडली बनवाते हैं और राशिफल देखते हैं, भावी बताने वालों के पास में जाते हैं, हस्तरेखा पढ़वाते हैं। यदि मनुष्य आज बुद्धिमान है तो वह जीवित एवं सच्चे परमेश्वर की उपासना क्यों नहीं करता? वह सत्य में क्यों प्रवेश नहीं करता है? यर्मिया की पुस्तक 10 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, हे यहोवा, मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। परमेश्वर के वचन से परमेश्वर का प्रकाशन पाए बिना मनुष्य सीधी चाल नहीं चल सकता है। जिस पल मनुष्य परमेश्वर के वचन से विमुख होगा, उसी पल वह चक्र मार्ग पर होगा। परमेश्वर का वचन ही हमारा प्राकृतिक मार्ग है। सच तो यह है कि हमारा आरंभ ही इस प्रकार हुआ है। मैं अपने बच्चों को चलना सिखाने के लिए बाहर ले जाता था। यह तो बहुत अच्छा है, परंतु मुझे थका देता था। वह प्रत्येक घर के पास जाना चाहता था और जब हम सड़क के निकट आते तो वह सड़क पर दौड़ लगाना चाहता था, और जब हम सड़क के मोड़ पर आते तो वह गलत दिशा में चलना चाहता था। मैंने किसी भी ऐसे बच्चे को नहीं देखा जो उसकी नाई गलत रास्ते पर चलना चाहता हो। एक दिन घर लौटने के बाद मैंने उससे कहा कि तुम अपने दादा के समान हो। जब वह परमेश्वर के वचन से दूर होता है तब वह चक्र मार्ग पर हो लेता है। मेरे मित्रों, मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में निर्देशन के लिए अंतर्यामी परमेश्वर पर निर्भर हैं। यहाँ पर अध्याय 10 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 11 में देखते हैं, जिसका विषय है जंगल में बांधी परमेश्वर की वाचा इसराइल ने तोड़ी। अध्याय 11 और 12 में सब लोगों को वाचा पढ़कर सुनाई गई। उसके बाद यिर्मयाह ने अपना महान संदेश सुनाया। मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय में 10 आज्ञाएं देने के बाद परमेश्वर ने व्यवस्था पालन में चूक के लिए दंड की घोषणा की थी। यिर्मयाह ने इन बातों पर बल दिया, व्यवस्था के पक्ष में जो हमारे आचरण को निर्धारित करते हैं। पड़ोसी के साथ आपका व्यवहार, आपके काम करने का तरीका, आपका सामाजिक जीवन, क्या आप उन कलीसियाई सदस्यों में से एक हैं जो कामदेव की पूजा करते हैं? मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने पत्नी का त्याग करके एक निर्बुद्धि बालिका से विवाह कर लिया है और वे सोचते हैं कि वे अब भी परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। आप चौराहे पर हैं और परमेश्वर से दूर हैं। अनेक मनुष्य रूढ़िवाद और उचित शिक्षा में होने की बात करते हैं। मैं भी इस पर बल देता हूं, परंतु इसके बराबर ही आवश्यकता इस बात की है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। आप कितने सच्चे हैं? आपका जीवन कितना शुद्ध है? यिर्मयाह यहां इसी बात पर बल दे रहा है। यदि हम सच कहें तो हमें परमेश्वर के समक्ष स्वीकार करेंगे कि हमें उसके साथ चलने की आवश्यकता है, उसके निकट रहने की आवश्यकता है। परंतु यिर्मयाह के युग में वे ऐसा नहीं करते थे और आज भी बहुत से लोग ऐसा ही नहीं करते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक 11 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, इस वाचा के वचन सुनो और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से कहो। इस वाचा, जब मूसा की व्यवस्था मिली तब वह सबके सामने पढ़ी गई और राजा योशियाह ने सब अगुओं को बुलाकर शपथ खाई कि वे परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे। यिर्मयाह 11 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, उनसे कहो इसराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन न माने। व्यवस्था की पुस्तक के मिलने से पूर्व वे व्यवस्था की बातों को नहीं जानते थे, परंतु अब वे जान गए थे और उनका उत्तरदायित्व अधिक हो गया था। परमेश्वर ने कहा, श्रापित है वह मनुष्य जो इस व्यवस्था के वचन को ना माने। मैं अनेक बार कह चुका हूं कि मैं पृथ्वी के किसी अंधेरे कोने में मूर्ति पूजा करता यदि मैं परमेश्वर के सही वचन को नहीं पहचानता। आज अन्य जाति तो ऐसा ही करते हैं। यदि मैं उस कलीसिया का सदस्य हूं जिसका पास्टर परमेश्वर का वचन सच्चाई से सुनाता है और मैं प्रतिक्रिया नहीं दिखाता, मैं कहता हूं कि मेरे मन में सुसमाचार सुनकर उसका त्याग करने वाले कलीसियाई सदस्य की अपेक्षा एक अन्य जाति के लिए अधिक सम्मान है जिसके पास अभी सुसमाचार नहीं पहुंचा है। परमेश्वर निश्चय ही दंड देगा। मेरे प्रियो, अध्याय के अंत में कहा गया है कि यिर्मयाह को उसके जन्म स्थान के लोगों ने त्याग दिया था। यिर्मयाह की पुस्तक 11 अध्याय उसके 19 से 21 पद में लिखा है, मैं तो बध होने वाले भेड़ के बच्चे के समान अनजान था। मैं न जानता था कि वे लोग मेरी हानि की युक्तियां यह कहकर करते हैं, आओ हम फल समेत इस वृक्ष को उखाड़ दें और जीवतों के बीच में से काट डाले, तब इसका नाम तक फिर स्मरण न रहे। परंतु अब हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मी न्यायी, हे अंतःकरण की बातों के ज्ञाता, तू उनसे बदला ले और मुझे दिखा, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे हाथ में छोड़ दिया है। इसलिए यहोवा ने मुझसे कहा, अनातोत के लोग जो तेरे प्राण के खोजी हैं और यह कहते हैं कि तू यहोवा का नाम लेकर भविष्यवाणी न कर, नहीं तो हमारे हाथों से मरेगा। परमेश्वर यर्मिया से कहता है कि अनातोत के निवासियों को संदेश सुनाने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने मुझे त्यागा है और तुझे मार डालना चाहते हैं, उन्हें भविष्यवाणी का वचन सुनाने की चिंता मत कर। मेरे मित्रों, आज ऐसी कलीसियाएं हैं जो अपरमेश्वर की बातों के लिए खड़ी नहीं होती और न ही पहले के समान परमेश्वर के वचन की शिक्षा देती हैं। लोग कहते हैं कि उनकी सदस्यता में कमी और आराधनालयों का खाली रहना बहुत बुरा है। बुरा तो वास्तव में यह है कि उनके प्रचार मंच से परमेश्वर का वचन नहीं सुनाया जाता है। यर्मिया ने अनातोत में परमेश्वर का वचन सुनाना छोड़ दिया था, वह कहीं और चला गया क्योंकि वहां के लोग उसे मार डालना चाहते थे। उन्होंने परमेश्वर के वचन का त्याग कर दिया था। यह कैसा परिदृश्य है! परमेश्वर के लिए खड़ा होना भारी पड़ा था, उसका दिल तो टूटा ही, उसका जन्म स्थान भी उससे बिछड़ गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 44 पद में लिखा है, क्योंकि यीशु ने अपना ही साक्षी दी कि भविष्यद्वक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। प्रभु यीशु को भी अपना स्थान नासरत छोड़कर कफरनहूम जाना पड़ा था। यर्मिया को भी ऐसा ही करना पड़ा था। मेरे मित्रों, यर्मिया का संदेश वैसा नहीं था जैसा आज हम सुनते हैं। आज प्रचार किया जाता है कि प्रभु यीशु के पास आ जाओ तो वह आपको नया व्यक्तित्व प्रदान करेगा, वह आपको धन धान्य से संपन्न करेगा, आपका जीवन सफल होगा। परंतु यर्मिया और उसका जीवन ऐसा कुछ प्रकट नहीं करता है। यर्मिया दिखाता है कि परमेश्वर के निकट आने के कारण आपको कीमत चुकानी होगी, परंतु वह इसके योग्य है। परमेश्वर के साथ वाचा बांधने के उपरांत भी जागृति सतही थी, निचले स्तर पर थी। इसमें संदेह नहीं कि यर्मिया के संदेश का प्रभाव पड़ा था और कुछ में सच्चा बदलाव भी आया था कि वे परमेश्वर की भक्ति में लग गए थे। यर्मिया प्रचार करता था, तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये सब वचन यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में प्रचार करके कह, इस वाचा के वचन सुनो और उसके अनुसार चलो। परंतु उनकी दशा बिगड़ती ही जा रही थी। जागृति के बाद आत्मिक बातों में उनकी रुचि फिर कम हो गई थी और वे अपने पुराने चाल चलन में लौट आए थे। यहां तक कि राजा योशियाह ने भी भारी चूक की। वह मिस्र के राजा नीको से युद्ध करने गया और मगीदो में युद्ध किया। वह बुरी तरह घायल हो गया था। दूसरा इतिहास के पुस्तक 35 अध्याय के 25 पद में यर्मिया उसके लिए विलाप करता है। यर्मिया ने योशियाह के लिए विलाप का गीत बनाया और सब गाने वाले और गाने वालियां अपने विलाप के गीतों में योशियाह की चर्चा आज तक करती हैं। मेरे प्रियो, यर्मिया के विलाप का कारण था कि अब प्रजा मूर्ति पूजा से लौट जाएगी, वरन अधिक अनैतिकता में गिरेगी, और ऐसा ही हुआ। यर्मिया उन्हें वही संदेश सुनाता था जो वे सुनना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने उसका संदेश तुच्छ जाना और उसकी हत्या का षड्यंत्र रचा, अतः उसे अनातोत छोड़कर भागना पड़ा। यदि योशियाह जीवित होता तो यर्मिया की रक्षा करता, परंतु वह मर चुका था। मेरे प्रियो, यहोआहाज गद्दी पर बैठा, परंतु 3 महीने बाद हटा दिया गया और मिस्र के राजा नीको ने यहोआकीम को राजा बनाया। यहोआकीम मिस्र को कर देने लगा, जिसके कारण देशवासियों पर आर्थिक बोझ बहुत बढ़ गया था। शीघ्र ही बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने नीको को युद्ध में हरा दिया और यहोआकीम बेबीलोन के अधीन हो गया। 3 वर्ष पश्चात यहोआकीम ने बेबीलोन से विद्रोह किया और यर्मिया ने उसे मना किया था, परंतु वह नहीं माना। यर्मिया ने उसे पहले भी चिताया था कि मिस्र से समझौता करना व्यर्थ होगा, परंतु यहूदा के राजाओं ने उसकी बातों पर ध्यान न देकर अधिकाधिक भ्रष्टता को अपनाई। मेरे मित्रों, यहां पर हम इस अध्ययन में देख रहे हैं कि परमेश्वर के जन जिसे परमेश्वर ने चुना है वे परमेश्वर से दूर हटते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, वे राजा और प्रजा सब एक जैसे हैं, और यहां पर हम देख रहे हैं कि उनके जीवन में भ्रष्टता आ गई। आज आपका और मेरा जीवन किस प्रकार का है? क्या हम उस सच्चे और जीवते परमेश्वर को जानने के बाद भी उस गंदगी में जीवन जी रहे हैं, या हम सत्यता का जीवन जी रहे हैं? मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, परंतु आज के इस वचन के प्रकाशन में हम अपने जीवन को झांक करके देखें कि हम कहां पर हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।